ऐसा कहेंगे। जीव प्रदेश और कर्मों का एक मेक हो जाना दूध और पानी की तरह, उसको कहेंगे बंध। आश्रय की क्या परिभाषा बनी? कर्मों के आत्मा में आने का नाम आश्रय, और कर्मों का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना बंध हो गया। ऐसी परिभाषा सीधी सीधी है। अब जिन वजहों से कर्म आते हैं उनको रोक देना, इसका नाम क्या है? संवर। आश्रय के कारणों को रोक देना, उस तो काहे से रोकेंगे? तो कैसे? व्रत से रोकेंगे, संयम से रोकेंगे, क्योंकि अविरति है और असंयम है, इसकी वजह से कर्म आते हैं, हम पहले समझ चुके हैं, कषायें हैं हमारी, तो इन सबको हम रोक देंगे तो कर्म आना। तो वही लिखा शम दम दें। शम का मतलब होता है, यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, एक मिनट नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, शम मतलब प्रशम भाव, जिसको अपन कहते हैं कषाय, कषाय की मंदता, उसको बोलेंगे शम है। और दम मतलब है इंद्रिय और मन को वश में करना। ये हो गया तप। तो संयम और तप, सीधी सीधी बात, अपन दूसरी अपनी चलने वाली भाषा क्या है? संयम और तपस्या के द्वारा हम कर्मों का आना रोक सकते हैं। यहाँ पर दिया है शम और दम, तो शम के मायने क्या है? कषायों का शांत होना, और दम के मायने क्या है? इंद्रिय और मन का अपने वश में कर लेना। ये शम और दम, इनके द्वारा संवर होता है। दोनों बताते जा रहे हैं ये कि कर्मों के रुकने का ना आना रुक जाए तो वो संवर है। काहे से रुकता है? तो कहते संयम और तप के द्वारा रुकता है, या शम और दम के द्वारा रुकता है। अब फिर आना तो रुक गया, पर जो कर्म बंधे हुए थे उनका पार्शियल डिसइंटीग्रेशन है, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, अब उनको जो है ग्रेजुअली एक 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 कर्म को अलग करना है, तो उसका नाम निद्रा कहलाएगी। पार्शियल है, पार्शियल भी कह सकते हैं, ग्रेजुअल भी कह सकते हैं। ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, ग्रेजुअल डिके या पार्शियल डिके, वो कैसे होगा? तो कहते हैं तप बलते हैं, तप के माध्यम से। तप के माध्यम से संवर भी होता है, तप के माध्यम से निद्रा भी होती है, दोनों चीजें हैं। और तप के मायने क्या होता? इच्छा निरोधा तपा, सबसे सरल सरल परिभाषा है। अपनी इच्छाओं को जितना कमती कर लेंगे उतने ही हम तपस्वी माने जाएंगे। आप आज दिन भर में आप चाहें तो एक इच्छा कम कर दीजिए, आपकी तपस्या हो गई। तप का मतलब अपन को ऐसा लगता है कि वो वैसे बैठ बाट करके जो है और ध्यान व्यान करना बहुत तपस्वी है, ऐसा नहीं, वो नहीं है। हमने अपनी इच्छा को कम कर दिया, वही हमारा तप हो गया, उससे हमें जो कर्म आ रहे थे वो रुक जाएंगे और जो पुराने बंधे हैं वो निकल जाएंगे। अभी मैं कल एक चीज बताना भूल गया था, कल के प्रवचन में मैं एक विचार और था उसमें कि जो कहा था ना कि भावनाओं का अगर उस पर मोहर लग गई है तो उसका फल अनंत गुना हो जाता। कहते हैं कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं अगर बुरी भावना से कर रहे हैं तो उनका फल, बुरा फल अनंत गुना मिलेगा, लेकिन उनका जो शुभ फल है वो जीरो हो जाएगा। देखो, बुरी भावना से किए गए कार्य का फल अनंत गुना, बुरा फल अनंत गुना, और अच्छा फल जीरो। और अच्छी भावना से उसी कर्म को करें जिसको आपने बुरी भावना से करा था, उसी कर्म को अच्छी भावना से करें तो उसका फल, अच्छा फल अनंत गुना, बुरा फल जीरो। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जैसे ही हम तपस्या करते हैं तो जो हमारे साथ बुरे कर्म बंधे हुए हैं उनकी तो होती निर्जरा, और जो बुरे कर्म आने वाले थे उनका हो गया संवर। दोनों काम, संवर भी हो गया, नए कर्म नहीं आए, और जो पुराने बुरे थे वो भी जीरो होना शुरू हो गए, उनका भी डिसइंटीग्रेशन डीके होना शुरू हो गया। तो दोनों चीजें, संवर भी होता और निर्जरा भी होती तप के द्वारा। ताही सदा आचरिए, उसी का आचरण हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम निर्जरा करना चाहते हैं। और मोक्ष क्या है? सकल कर्म ते रहे तवस्था सो शिव फिर सुखकारी। कितने बढ़िया से विशेषण भी दे देते हैं, हमें उसका परिचय भी करवा देते हैं, दोनों चीजें हैं। सब कर्मों से जो रहत अवस्था है, मोक्ष नाम की कोई जगह नहीं है जहां हम पहुंच जाएंगे तो सब सुख मिल जाएगा, नहीं। मोक्ष का मतलब है समस्त कर्मों से रहित हमारी एक स्टेज है, जो हमारी वर्तमान की स्टेज है, ऐसे एक स्टेज है जिसमें हम कर्मों से रहित होते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। और शिव मतलब मोक्ष, शिव का मतलब समझना मोक्ष, और जो कैसी है, स्थिर है, एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर बाद में जाती नहीं, स्थिर और सुखकारी, हमेशा सुख देने वाली है। ई विधि सो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। अगर हमने जो इन सात तत्वों का स्वरूप पढ़ लिया है और हम ऐसा ही इनका स्वरूप पर विश्वास कर लेते हैं, इस पर हम श्रद्धा कर लेते हैं कि सही बात है, सच्ची बात तो यही है कि मेरा अपना स्वभाव जो है चेतना रूप है और इससे विपरीत जो तत्व हैं वे सब अचेतन हैं। अचेतन भी पांच प्रकार के हैं, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं। इनके अपने अपने स्वभाव हैं। यही तो कहा था कि पुद्गल, नवधर्म, अधर्म, काल, इनते न्यानी है जीव चाल। समझ में आ गया, वहां पर मैं गलती करता था, इन सबको एक में एक मान लेता था। अब समझ में आया कि मेरी चेतना स्वरूप अलग है और ये तो अचेतन है और ये पांचों भी अलग है और मुझे इन अचेतन कर्मों के द्वारा ही बंधना पड़ता है। क्यों बंधना पड़ता है? क्योंकि मैं मन वचन काय की क्रिया करता हूँ और साथ में मेरे कोई ना कोई कषाय होती है, मिथ्यात होता है या मेरा प्रमाद होता, अविरति होती, इनकी वजह से मेरे निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है। जब नहीं, कर्मों का आश्रय होता रहता है और जब ये आश्रय होता है तो जो कर्म आते हैं वे आकर के मेरी आत्मा के साथ हमेशा के लिए संबद्ध हो जाते हैं या एक निश्चित समय के लिए बंध जाते हैं। तो इसी का नाम तो बंध है। ये सहज सी प्रक्रिया, ये सहज सी प्रक्रिया है। और जब मैं अपने मन वचन काय को रोक लेता हूँ और क्या कहें उसको, अपनी कषायों को कम करता हूँ तो मेरे कर्म आना कम हो जाते हैं या कि बंद हो जाता, उसी का नाम तो संवर है। और जब मैं तपस्या करना अपनी इच्छाओं को रोक लेता हूँ तब तपस्या के द्वारा धीरे धीरे कर्म निकलना शुरू हो जाते हैं। एक स्थिति बनती जब सारे कर्म निकल जाएंगे, वही तो मेरी मोक्ष अवस्था है। बात समझ में आई? ऐसा अपने आप भीतर से फील होना चाहिए कि यही तो प्रोसीजर है, मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं खुद ही करता हूँ और खुद ही उसका फल भोगता हूँ। जब मैं ये करना छोड़ दूँ तो सारा कुछ जो है शांत हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जल्दी से विश्वास हो गया, प्रोसीजर पूरा यही है। तो कहते यही विधि सो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। इस प्रकार जो श्रद्धा कर लेता है, जिसको ये बात जचने लगती। एक चीज और आपसे कहूं, मान लो इनका स्वरूप भूल भी जाओ, मेरा इंटेंशन छेड़ाला को पढ़ाने का ऐसा नहीं है कि आपको रटंत विद्या के द्वारा आप, मैं जो पूछूं और उसको फट से बता दें तो आपको मान लूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया आपने सीख लिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मान के चलिए। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि जब कभी आप बैठें खाली और आपको लगे कि हाँ ठीक तो है, मैं ही मन वचन काय की क्रिया करता हूँ, कषाय करता हूँ, ये सब अचेतन है, मैं तो चेतन हूँ और मैं जब ऐसी क्रिया करता हूँ तो मेरे कर्म आते हैं, फिर मेरे से बनते चले जाते हैं, जब मैं ये क्रिया बंद कर दूंगा तो ये सब कर्म आना बंद हो जाएंगे और पुराने वाले कर्म खत्म हो जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, वही तो मेरी मोक्ष अवस्था है। अब समझ में आ गया, इतना इजी, ये भीतर में है, ये सब अपन ने आचरण में ला लिए। एक व्यक्ति का आपको उदाहरण बताऊं, अब ये मैंने बहुत प्रैक्टिकेबल कैसे हैं ये सारी चीजें, ये तो समझ नहीं अपन ने और रट भी लेंगे। कई लोग जो है बिल्कुल ज्यों कहते हैं बता देंगे, अकेले ज्यों कहते हैं बताने का नाम पढ़ना नहीं है। उसको जीवन में एक व्यक्ति था साड़ू मल में, बिल्कुल फैक्ट है ये घटना, वो पंडित जी साहब सुनाते वहां के हीरा लाल जी के महाराज, हमारे पास वो व्यक्ति कर्म सिद्धांत पढ़ता था कि कैसे कर्म आते हैं, कैसे बन जाते हैं, क्या स्थिति बनती, क्या उनका अनुभाग पड़ता है, कितने आते हैं, किस किस नेचर के होते हैं, सब क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और उनकी पोटेंशियलिटी क्या है, सब खूब अच्छे से पढ़ता था। एक बार जो है वो पकड़ा गया चोरी में। हाँ, तो हमको विश्वास नहीं हुआ, हमने कहा भाई क्या चोरा, पंचायत बैठी, पहले ऐसा नहीं होता था कोर्ट वोर्ट, पंचायत बैठी कि भैया तुमने चुराया, क्या चुराया, तो लोगों ने कहा कि इनने भूसा का बोरा चुराया। देखो भूसा उसका बोरा चुराया, वो पकड़े गए, पहली बार तो चुराया उसने। अब उसको ये समझ में नहीं आई कि भूसा का बोरा कंधे पे लेकर के जाएंगे दूसरे के घर से उठा के, तो उसकी लाइन तो गिरती है पूरी घर तक, तो वो गिरती गई लाइन भूसा की, तो पकड़ा गया वो, दूसरे दिन पकड़ा गया और टिको तो सो कोई ने जाके पूछी क्या भैया जो हमारा भूसा का बोरा, कहले हाउ या अभी झूठ भी नहीं बोल रहा तुम ही दो आए, और पकड़े गया। अब जब पेशी हुई तो उससे कहा कि भैया और तो सब ठीक है, मालूम पड़ गया तुमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन ये बताओ तुमने चुराया क्यों और जे क्यों चुराया, सोने की सामग्री उतनी बाजू में रखी थी, ऐसे पैसा पड़े थे, रुपया पड़े थे, तुम इतना बड़ा भूसा का बोरा लेके गए, कहले मालिक भयाने को लड़का बच्चे के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, 3.5 रुपया जाने थे, अब वो उतने पैसों में से हम नहीं गिन के जानत के 3.5 के देखो थे, हम जा जानत के 3.5 को बोरा बिखे, तो हम उतना ही ले गए थे। पंडित जी से हमने पढ़ी है कि जैसे परिणाम करो वैसे ही कर्म बनता है, हमें ज्यादा बड़े कर्म नहीं बांधने, हमारी इतनी जरूरत थी तो हमने। अब देखो आप पंडित जी से पढ़ी थी कि ज्यादा करें ज्यादा इंडल्जिंग होगी तो ज्यादा बंदे की हमारी कोई ऐसी आशक्ति नहीं थी, 3.5 रुपये जाने। तो हमने की अब जी पैसों में से ले जाए तो क्या पता ज्यादा कम कितने हो जाए, कितने को बिके, जो मालूम होती कि 3.5 को बिके, ऐसे जो 3.5 काम ले गए थे। अब प्रैक्टिकल देखिए उसका, वो कर्म बंध आश्रय और बंध तत्व को जान करके जो आश्रय और बंध से विमुख होता है सच्चा बढ़ने वाला, तो वो है। और जो संवर और निर्जरा को जान करके निरंतर कहता है कि इसको कैसे कर्म कर लूं, अभी तो कोई जरूरत नहीं मन वचन काय की क्रिया करने की, तो शांत बैठो ना, जितना शांत बैठूंगा उतना ही संवर होगा, उतना ही निर्जरा होगी, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों दूसरा खाली है तो अपन कई चीजें उपद्रव शुरू कर देते हैं, और दूसरे कि अब खाली है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो यहाँ का वहां, वहां का वहां, कुछ का कुछ करना शुरू कर देंगे, एंगेज करना अपने आप को। लेकिन अपने आप को एंगेज करेंगे तो मन वचन काय की क्रिया तो होगी, शांत बैठे रहेंगे तो संवर और निर्जरा होने वाले। ये अगर हमें आ जाता है प्रैक्टिकल, तो सातों तत्वों का स्वरूप अगर नहीं भी आए तब भी हमारा काम हो जाए। और जो सब स्वरूप समझता है और आश्रयबंध करता रहता है वो तो उसके लिए तो धर्म सिर्फ किताबी है। सो समकित व्यवहारी, इसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि हो गया, और व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है। एक दिन हम अपनी आत्मा की रुचि, जब मैं तो सोचता हूं कि आत्मा की रुचि हुई होगी जिसको, वो ये सब करेगा, और जो ये सब कर रहा है एक दिन अगर उसको समझ आ गई कि मुझे ये सब इसलिए करना है, क्योंकि दो तरह से कर सकता व्यक्ति, मन वचन काय की क्रियाओं को अपने स्वार्थवश भी रोक लेता है। बगला का उदाहरण अपने यहां बहुत आता है, बगला जो है उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, वो मछली पकड़ने के लिए एकाग्रचित होता है, तो मन वचन काय की क्रिया रोकने से अकेले काम नहीं है, उसके पीछे हमारी दृष्टि क्या है, आत्मरुचि। अगर ये दोनों एक साथ हो गई कि एक तरफ मन वचन काय रोकने की क्रिया और दूसरी तरफ आत्मा की रुचि, हो गया निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, दोनों एक साथ ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भीतर में जो हमारे परिणामों की निर्मलता है और बाहर में जो हमारी प्रैक्टिस है, बस यही व्यवहार और निश्चय है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो तो व्यवहार है, और इसके माध्यम से जो मैं अपने आत्मा में रुचि लूंगा वो निश्चय है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। अब ये सात तत्वों के श्रद्धान को तो सम्यक दर्शन कह रहे हैं, लेकिन और भी बता रहे हैं कि अकेले सात दर्शन, सात तत्वों का श्रद्धान किससे होगा। आत्मा में रुचि तो सात तत्वों की श्रद्धान से होगी, और सात तत्वों का श्रद्धान किससे होगा, कारण का कारण क्या है। कहते जब तक सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में नहीं बैठोगे तब तक सात तत्वों की तो अकल नहीं आने वाली आपको, ना उनका श्रद्धान होने वाला। तो देखो कैसे क्रम से बता रहे, पहले बताया आत्मरुचि, फिर वो आत्मरुचि कैसे होगी, तो कहते सात तत्वों की श्रद्धा करो। अब सात तत्वों की श्रद्धा कैसे होगी, कहते पहले सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा करो, तो सात तत्वों पर श्रद्धा होगी, सात तत्व पर श्रद्धा होगी तो आत्मा में श्रद्धा होगी, फिर उसमें रुचि होगी। वही बताते कि देव जिनेन्द्र, अगर हमारे देव हैं तो जिनेन्द्र भगवान है। जिनेन्द्र किसे कहते हैं, वितराग हितोपदेशी और सर्वज्ञ, वे ही जिनेन्द्र हैं, ऐसा कहिएगा। यहां जिनेन्द्र से मतलब तीर्थंकर से है विशेष रूप से, और दूसरी परिभाषा भी है कि पौने पांच हो गया है, क्यों भाई 4:30 नहीं तब ठीक। तो जिन्होंने अपने इंद्री और मन को जीत लिया है उसे जिनेन्द्र कहते हैं, या सीधा सीधा भी जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली, या जिन्होंने अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें जिनेन्द्र कहते हैं। और कर्मों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली वही तो अरहंत हैं, वही तो सिद्ध हैं, उन्हीं को अपन तीर्थंकर भी कहो तो कहो। तो एक ही परिभाषा हो गई सामान्य की, वितराग हितोपदेशी और सर्वज्ञ, वे ही हमारे सच्चे देव हैं, उन पर श्रद्धा करना। और गुरु परिग्रह बिन, तीन शब्दों में हो गया, बल्कि परिभाषा दो ही शब्दों में, परिग्रह बिन गुरु। अपन कहते हैं ना विषयों की आशा नहीं जिनके, बस इतने में हो गया, विषयों की आशा नहीं जिनके। साम्य भाव तो बाद में आएगा, कभी कभी साम्य भाव नहीं भी रह पाएगा, लेकिन विषयों की आशा नहीं है। हाँ नहीं संभव है, कभी कभी नहीं भी रहेगा साम्य भाव। अब साम्य भाव कई बार नहीं रहता है, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर नहीं बैठेंगे वहां बैठेंगे, ये क्या है, ये भी तो साम्य भाव नहीं है आपका। दे रहे थे नहीं ले, जो दे रहे हैं वो ले, जैसा दे रहे वैसा ले, आपका संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो समता मतलब यथालब्ध है, एक्चुअली प्रक्रिया है यथालब्ध। शुरू शुरू में आचार्य जी ने करा, लेकिन और भी महाराज जी लोगों ने करा, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होती। यथालब्ध मतलब पानी देते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, आप ही अपने आप के बस 3-4 अंजलि दे दी, आप दूसरी चीज दो, एक बस मना नहीं करेंगे, उसमें बीमार पड़ गए थे क्योंकि अब उनने दूध देना शुरू किया, देते चले गए। जब उनको अब आचर्षि को देते चले जा रहे हैं दूध, तो उनको जितनी गुंजाइश थी, हिम्मत थी, उतना तो उन्होंने लिया। उसके बाद बैठ गया कि अब कुछ दे ही नहीं रहे, तो खत्म, चलो। यथा लब्ध के मायने ये होता कि जो देते चले जा रहे हैं, आपने चेंज नहीं किया तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो आप दूसरी चीज करेंगे। बस खुली है, आप देते चले जाओ, फिर आप और जब तक लेना ले लिया, फिर उसके बाद तो समता। तो इसलिए नहीं, अगर आपने ऐसी कर ली वो तो आप समझदार हो तो समझ जाओ, पर जिसके समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसने इनने इसलिए बहुत बड़ा लक्षण न लिख के थोड़ा सा लिख दिया कि परिग्रह बिन परिग्रह से रहते हैं। जब धर्म सागर जी महाराज के पास किसी मुनि महाराज की शिकायत लेके एक व्यक्ति पहुंचे कि महाराज तो ऐसा ऐसा करते हैं, क्या करना चाहिए महाराज को ऐसा, तो धर्म सागर जी ने अरे दिया भैया बहुत प्रेम से उसको बहुत खुश हुआ कि चलो पूछेंगे क्या क्या करते हैं। कहने कहा भाई कपड़ा तो नहीं, नहीं नहीं कपड़े महाराज कहाँ कपड़ा पड़ गए आप, वो भी कपड़ा गया एक बार, उसने तो बहुत गलती गिनाई थी। उनने बड़े धीरे से कान में से जैसे पूछा वस्त्र तो नहीं पहने, नहीं नहीं और कुछ सामान वामान तो नहीं, कहने का छू नहीं, दो बार तो नहीं खा, नहीं नहीं ये कई बार खाते हैं, कहते उठो फिर यहाँ से हो गया, फिर हमें बाकी नहीं सुनना। हमारा बाह्य रक्षण इतने ही से पूरा हो गया, अब अंतरंग की परिणामों को क्या कह सकते हैं, किसके कैसे परिणाम। तो परिग्रह से रहते हैं इतना ही हमारा गुरु का लक्षण है, जो निष्परिग्रही है। देखो परिग्रह रख के भी कई लोग समता भाव रख सकते हैं, इसलिए समता भाव अकेला लक्षण नहीं, वो तो अंतरंग परिणाम है। वाही में परिग्रह से रहित होना चाहिए, और समस्त परिग्रह अंतरंग और बहिरंग सब परिग्रह से रहे। धर्म दयाजुत, कितने आसानी से परिभाषाएं बता दी है। हमारे देव कौन, जिनेन्द्र। हमारे गुरु कौन, परिग्रह रहित। हमारा धर्म कैसा, दया दया से युक्त। हो गई हमारी परिभाषा, देव गुरु सत्य देव गुरु शास्त्र की परिभाषा इससे आसान एक लाइन में, ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ सच्चे देव कौन है, जो भी इतरागी है तो उपदेशी है, वो जिनेन्द्र हैं। और सच्चे गुरु कौन है, परिग्रह से रहित जो है। सच्चा धर्म कौन सा है, दया धर्म सच्चा धर्म। बस ये हुमान समकित, ये सब कारण है, ये सम्यक दर्शन में कारण बनेंगे। इनको मैंने सम्यक दर्शन मत मान लेना कि इतना हो गया तो सम्यक दर्शन, ये तो कारण है जिसकी वजह से हम सम्यक दर्शन को पाएंगे। और इतने ही नहीं, आठ अंगों से ये युक्त होना चाहिए, बस इतने ही रहने दे। वे आठ अंग कौन कौन से हैं, तो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर दृष्टि, उद्गुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। पहले वात्सल, फिर ये आठ अंग हैं, इनके अलग अलग स्वरूप भवन बाद में पढ़ेंगे। निशंकित मतलब शंका नहीं करना, निकांक्षित मतलब आकांक्षा नहीं करना, निर्विचिकित्सा मतलब घृणा नहीं करना, और अमूर्ता सुपरस्टिशंस नहीं होना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, उपगुहन दूसरे के दोषों को ढकना, अपने दोषों को उघाड़ना, दूसरे के गुणों को उघाड़ना, अपने दोषों को ढकना, नहीं अपने गुणों को ढकना उल्टा हो गया इस तरह। उपगुहन स्थितिकरण, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विचलित होता हो तो उसे पुनः स्थित कर देना। वास्तव साधर्मी के साथ प्रेम भाव रखना, प्रभावना जहां बैठो वहां अपने धर्म की बात करना, हो गया। शॉर्ट में तो जो है आठों बातें अपने आप आ जाएंगी, जिसकी दृष्टि निर्मल होगी ये आठों चीजें ऑटोमेटिकली उसके भीतर आ जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आठ अंगों से युक्त है। और अब आगे जो है इन्हीं आठों के लिए, हाँ एक चार लाइनों में ये पूरा बता देंगे बस। फिर आठ मद से रहित होता है, छह अनायतन से रहित होता है। अच्छा ये पूरा बताएंगे इसमें,
चैप्टर पूरा आ गया,
ठीक जो पूरा चैप्टर
लिखा है
ये हो गया इतना, बस इतना ही रहने दे, है ना।
कब 30 दिसंबर का प्रवचन शुरू होता है,
आज विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समाप्त।